ओम शांति। सभी बड़े प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस सुंदर संध्या के समय पर, जहां पर ज्ञान सरोवर के प्रांगण में इतनी सुंदर प्रकृति का आनंद लेते हुए आप सभी साधु संत महात्माओं का स्वागत करने के लिए स्वयं प्रकृति भी मंद मंद बरस रही है। कितनी खुशी की बात है। और इसी को लेकर के ही राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत धार्मिक प्रभाग का ये कार्यक्रम ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आयोजन किया गया है। तो हमारे पूरे भारत वर्ष से, भारत के कोने कोने से हमारे संत, महंत, महान विभूतियां, महामंडलेश्वर, हमारी श्री साध्वियां और ऐसे श्रावण महीने के दिनों में होते हुए भी हमारे पंडित जी, पुजारी जी, कथावाचक जी भी अपना अमूल्य समय निकाल करके आज एक धार्मिक प्रभाग में आकर के आपने इस ज्ञान सरोवर के आंगन को रोशन किया, तो मैं आप सभी का, महान आत्माओं का, महान विभूतियों का बहुत 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 दिल से कोटि कोटि वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे बीच में कुछ महात्मा, महामंडलेश्वर और पंडित जी आए हुए हैं, जिनको भारतीय संस्कृति के अनुसार हम सभी कहते हैं अतिथि देवो भव। तो आप हमारे मेहमान हैं, बाबा के आपके अपने घर में आए हो, तो आप सभी के सम्मान के लिए हमने यहाँ पर चेयर्स लगाई हुई है। तो जिनका मैं नाम बोलती हूँ, अनाउंस करूंगी, आप कृपया यहाँ पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री गोविंद उमेद जी महाराज, श्री उमेदा सिद्ध महाराज, श्री स्मोकिंग महाराज, श्री कैलाश नेचर महाराज, अगर कृपया आप यहाँ बैठे हैं तो खड़े होकर के अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे और मैं चाहूंगी कि आप सहयोग करेंगे इसमें। श्री ब्रह्मानंद महाराज जी आइए, श्री गोवर्धन महाराज जी, श्री कांति बहन जी, आपसे भी अनुरोध है आप सभी मंच के ऊपर आइए और इस मंच को आपके सुंदर उपस्थिति से सुशोभित करें। महंत श्री झालेश्वर महाराज जी, परम पूज्य शिव योगी महाराज जी, राजेंद्र सिंह महाराज जी, संजय सिंह, श्री तेज महाराज पंडित जी, श्री सनी महाराज पंडित जी, श्री सन्नी महाराज पंडित जी, श्री मालहर महाराज पंडित जी, श्री अमित मिश्रा जी, श्री राहुल जी एस्ट्रोलॉजर, श्री हिरण भाई पंचाल, हाँ जो अपने गाइड लेकर के आए हैं, जो इनको लेकर के आए हैं, ये सभी पीछे बैठेंगे। पुष्पविंद श्री हिरण भाई पंचाल, श्री ब्रह्मदत्त जुगोल किशोर शास्त्री जी, श्री ब्रह्मदत्त जुगोल किशोर शास्त्री ज्योतिष भूषण वास्तु विद्या भारती नवापारा राजीम से आप हमारे बीच में पधारे हैं। आइए आइए। डॉक्टर कृष्णा देव गिरी जी, डॉक्टर सेवानंद महाराज जी, डॉक्टर सेवानंद स्वामी महाराज जी, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी भुवनेश्वर से, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज फरुखाबाद से, महामंडलेश्वर कमल किशोर जी सहारनपुर से, श्री 108 अनिता जी महाराज, श्रीमती श्री सुरेश निजवान महाराज, संत श्री चंदर प्राशर जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री 108 प्रफुल्ल राजन जी, महामंडलेश्वर श्री 108 प्रफुल्ल राजन जी, महामंडलेश्वर 108 जगदीश वैद्य जी, साध्वी श्री 108 रेखा जी, महामंडलेश्वर साध्वी श्री 108 निर्मला जी, श्री वाई एल बंका जी, बंटे करुणाकर महाथेरा फरुखाबाद से, साध्वी श्री सुलभ भारती जी फरुखाबाद से, बहुत सुंदर, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज फरुखाबाद से, सरदार पीतम सिंह जी पानीपत से, रामशेरपुरी चित्रकूट से, श्री राम शेरपुरी चित्रकूट से कृपया जल्दी मंच पर आए और आप सभी बहुत ही सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक अपने अपने स्थान को आप ग्रहण करें। महामंडलेश्वर सुरेंद्र शर्मा सहारनपुर से, श्री त्यागी जी महाराज कटनी से हमारे बीच में आए हैं। आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आचार्य पुष्पेंद्र जी महाराज आपसे भी अनुरोध है मंच पर आए और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अगर किसी का नाम रह गया हो, कोई लेट आए हैं और किसी का नाम अगर रह गया हो तो आप आदर पूर्वक बता सकते हैं, उनको आप सम्मान पूर्वक स्टेज पर बिठा सकते हैं। ओम शांति। आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका विषय है सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्मिकता, और इसी आध्यात्मिकता की दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस मंच को, हमारी महान विभूतियों को, महान व्यक्तित्व वाली धनी आत्माओं को, संतों को, महामंडलेश्वरों को इस मंच पर आगे की सीट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारी अति परम आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, निर्देशिका ज्ञान सरोवर, जॉइंट डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से हैं। आदरणीय दीदी जी कुछ ही समय में हमारे बीच में आएंगे। राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, एक बार हम सभी मिलकर के हमारे परम आदरणीय करुणा भाई जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं भाई साहब से अनुरोध करती हूँ, आप मंच पर आकर इस मंच की शोभा को आप बढ़ाएंगे। जोरदार हमारी सुदेश दीदी जी के लिए और करुणा भाई साहब के लिए जोरदार तालियों का साथ जरूर देते रहें। ऐसा मालूम होता है कि जैसे बरसात भी रुक रुक के आती है, ऐसा आपकी ताली भी रुक रुक के बज रही है। हमारी परम आदरणीय, अति परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी, अध्यक्षा धार्मिक प्रभाग विंग प्रयागराज इलाहाबाद से। दीदी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, कोकिला मठ भुवनेश्वर से आप हमारे बीच पधारे हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ मंच पर आसित होकर के मंच की शोभा को बढ़ाएं। जोरदार आपके लिए भी ताली हो जाए। आप इतने दूर से यात्रा करके हमारे बीच में पधारे हैं। भदंत हमारे आचार्य भदंत करुणाकर महाथेरा, महासचिव बौद्ध धर्म फरुखाबाद से हमारे बीच आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका। आचार्य श्री महामंडलेश्वर कमल किशोर जी से भी मैं अनुरोध करती हूँ, आप मंच पर आसीन हो चुके हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए। दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से आप हमारे बीच में आए हैं। संत बाबा दर्शन सिंह जी, संत बाबा दर्शन सिंह जी सोनीपत से हमारे बीच में आए हैं। आपको भी अनुरोध करती हूँ मंच पर उपस्थित हो जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। परम पूज्य शिव योगी नंदगिरी महाराज मठाधिपति पुना से आप हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। आचार्य श्री परमानंद जी महाराज कटनी से पधारे हैं। संत शिरोमणि रोहित दास जी महाराज, संत शिरोमणि रोहित दास जी महाराज खाटू श्याम मंदिर भरतपुर से आप हमारे बीच में आए हैं। आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य श्री झालेश्वर दास जी महाराज मानस रतन अयोध्या नगरी से, अयोध्या धाम से आप हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। हमारे अति कर्मस्थ ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन होकर इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। आप जोनल कोऑर्डिनेटर धार्मिक प्रभाग इंदौर से आप हमारे बीच में आए हैं, तो आपसे भी मेरा अनुरोध है मंच पर बैठ जाएं। इसके बाद हम अपने अति प्रिय अति आदरणीय हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई साहब से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो आप सभी देख रहे हो कि कितना सुंदर ये मंच सनातन धर्म की शान और बान। और साथ साथ हम कहेंगे कि आज इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में ये भगवा कितना चमक रहा है। तो जोरदार इस सभी संतों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, महानुभावों के लिए, रहनुमाओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से जोरदार ताली हो जाए। अभी आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के जो हम सबके पिता परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा जो जगत नियंता है, उस जगत नियंता परमात्मा ने आज इसी प्रेरणा, इस प्रोग्राम की प्रेरणा हमें दी। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के प्रेरक परमात्मा शिव का भी आह्वान करते हुए हम सभी 2 मिनट परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे, फिर आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे।
लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझ से लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझ से योग लगाए वो परमानंद को पाए। लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझ से योग लगाए वो परमानंद को पाए।
शांति। आज का जो हमारा विषय है, सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्म, और साथ साथ बहुत ही सुंदर विषय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का इस वर्ष का जो थीम है कि आध्यात्मिकता के द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज हम कैसे बनाएं, जिस स्वस्थ समाज की हम सभी कल्पना करते हैं या चाहना रखते हैं, तो वो स्वस्थ समाज कैसा होगा, इसी विषय पर त्रिदिवसीय ज्ञान सरोवर के इस सुंदर प्रांगण में ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और हमारे महान वक्ताओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से एक बहुत सुंदर चिंतन, अनुभव युक्त वाणी हम सुनेंगे। लेकिन आप सबको हम एक बात बताते हैं कि ये वो स्टेज है इंटरनेशनल स्टेज है। आज ये जो प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में हो रहा है, ये पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो आपकी वाणी पूरे संसार में किसी न किसी आत्मा को प्रेरित करती रहेगी। तो हमारा ये सुंदर मंच इन महान विभूतियों से कितना सुंदर सज चुका है, तो मैं अपनी आदरणीय, हम अपनी सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करते हैं, गुलदस्ते के द्वारा, बैजिस के द्वारा, तिलक से और पटका पहना करके सभी सम्माननीय मंच का अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। और आप सभी क्या करेंगे, आप सभी तालियों का साथ देते रहेंगे, तालियां बजाते रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि पार्क में हम जाते हैं तो बहुत ताली बजाते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी बजट सत्र निकल चुका है, सभी चीजों पर टैक्स लगा है पर तालियों पर टैक्स नहीं लगा है। आप सभी के स्वागत में दो लाइन सुनाना चाहूंगी। आए हो रहनुमा बनकर आप प्रभु के दर पर, आए हो रहनुमा बनकर आप प्रभु के दर पर, आओ चले सभी मिलकर, आओ चले सभी मिलकर अपने जीवन को आध्यात्मिकता से, अपने जीवन को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर दे, परिपूर्ण कर दे। अभी सभी संत महात्माओं का स्वागत के बाद मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारे मधुर वाणी ग्रुप, हमारे मधुर वाणी ग्रुप, आप इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि ये एक अनोखा अद्भुत ग्रुप है। हर समय हर एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे बच्चों का है, चाहे टीचर्स का है, चाहे संतों का है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसी समय हमारे सतीश भाई गीत बनाते हैं और आप सबको इतना सुंदर गीतों के माध्यम से एक आध्यात्मिकता का संदेश देते हुए, जैसे पूरी सभा को मनोरंजन से भरपूर कर देते हैं। तो मधुर वाणी ग्रुप में हमारे सतीश भाई, नितिन भाई और साथी भाई, जैसे उनके लिए कहा जाता है कि बरसात पड़ती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, बरसात पड़ती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, इस प्रकार जिस भी प्रोग्राम में मधुर वाणी ग्रुप के आने पर चारों ओर खुशहाली छा जाती है, चारों ओर खुशहाली छा जाती है। तो बहुत सुंदर गीत आज के प्रोग्राम के संदर्भ में हम सबके बीच में रखेंगे।
ओम शांति। एक बार सास्वर संवेद स्वर में आप सब कहें ओम शांति।
ओम शांति।
मंदिर सजता मूरत से, मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से अरावली का मंच सजा है, ऐसे ही प्रभु प्यारों से आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर लें।
वो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं, आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। महात्मन नाम के स्वागत में मयूरा मन के नाचे हैं, आज तो आज तो आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। महात्मन नाम के स्वागत में मयूरा मन के नाचे हैं, आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं।
आपकी तालियां आपका इच्छा है दर्शा जी।
अरावलिया जल में पलता बना आबू महातीरथ है, अरावलिया जल में पलता बना आबू महातीरथ है। यहाँ भगवान है आए, यहाँ आया भागीरथ है। अरावलिया जल में पलता बना आबू महातीरथ है, यहाँ भगवान है आए, यहाँ आया भागीरथ है। अचलगढ़ दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ दिलवाड़ा मंदिर गुरु शिखर से नजारे हैं, आज तो आज तो आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। महात्मा नाम के स्वागत में मयूरा मन के नाचे हैं, आज तो ज्ञान सरोवर में। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जू तारों से, है मंदिर सजता मूरत से और अंबर जू तारों से। सजा है अरावली का मन ऐसे ही प्रभु के प्यारों से, है मंदिर सजता मूरत से और अंबर जू तारों से। सजा है अरावली का मन ऐसे ही प्रभु के प्यारों से। आप आए अपने घर में, आप आए अपने घर में, प्रभु के बच्चे प्यारे हैं, आज तो आज तो आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। महात्मा नाम के स्वागत में मयूरा मन के नाचे हैं, आज तो ज्ञान सरोवर में।
एक महान उद्देश्य के साथ सत्ता अभिनंदन है।
बड़ी कल्याण भावना है स्वस्थ हो समृद्ध भारत हो, बड़ी कल्याण भावना है स्वस्थ हो समृद्ध भारत हो। पुनः आध्यात्म शक्ति से यहाँ पर राम राज हो, बड़ी कल्याण भावना है स्वस्थ हो समृद्ध भारत हो। पुनः आध्यात्म शक्ति से यहाँ पर राम राज हो, एक ही राह के राही, एक ही राह के राही, एक से लक्ष्य हमारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। महात्मा आपके स्वागत में मयूरा मन के नाचे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी की पड़ती फुहारे हैं।
बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार हाथ उठा करके मधुरवाणी ग्रुप का अभिवादन करेंगे। बहुत सुंदर गीत आप सबके बीच में रखा। अभी स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पटेल नगर से कन्याएं अपना सुंदर स्वागत नृत्य लेकर के आप सबके बीच में आ रहे हैं। तो इन नन्हे मुन्हे कलाकारों का आप तालियों का करतल ध्वनि से उनका उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे। आप सबका स्वागत करने के लिए स्कूल से छुट्टी ना मिलने पर भी कोई ना कोई बहाना करके आप सबके लिए सुंदर डांस प्रस्तुति करने बच्चे आए हैं। बहुत बहुत सुंदर। अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम सभी ने देखा बुके के द्वारा, तिलक के द्वारा, डांस के द्वारा, मधुर गीत के द्वारा और भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार आए हुए सभी मेहमानों का शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं ऐसी महान योगी, तपस्वी, धारणा मूरत, कर्तव्य निष्ठ, सदा एकाग्रता की धारणा पर चलने वाली ऐसी विशेष पर्सनालिटी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी को। जोरदार ताली बजाएंगे रामनाथ भाई जी के लिए, क्योंकि आप इस हेडक्वार्टर माउंट आबू में अपनी सेवाएं देते हैं और माउंट आबू हेडक्वार्टर धार्मिक विंग के आप कोऑर्डिनेटर हैं। और जितना भी आप देखा, आपके खाने की, रहने की, सोने की, हर तरह का जो प्रबंधन है, पिछले एक महीने से एक निरंतर प्रयास करके आप सभी को इस ज्ञान सरोवर में इतनी सुंदर सुविधा उपलब्ध कराई। तो आज रामनाथ भाई सिर्फ यहाँ माउंट आबू में ही नहीं, लेकिन देश विदेश में जाकर के इस परमात्मा पिता का आध्यात्मिकता का ये ज्ञान हर देश के कोने कोने में जाकर के अपनी मीठी मधुर वाणी से अनेकों लाखों आत्माओं को आपने लाभान्वित किया है। तो ऐसे मैं अपने अति प्रिय रामनाथ भाई जी से निवेदन करती हूँ कि आए हुए सभी मंचासीन मेहमानों का या सभा में उपस्थित सभी मेहमानों का आप शब्दों की श्रृंखला से स्वागत करें, आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान आदरणीय राजयोगी सुदेश दीदी जी, निर्देशिका ज्ञान सरोवर, जॉइंट डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू, आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी, चेयरपर्सन मल्टीमीडिया ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू, आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी अध्यक्ष धार्मिक प्रभाग प्रयागराज, आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी कोकिलामठ भुवनेश्वर, आदरणीय भदंत करुणाकर महाथेरा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट मॉम सोसाइटी दिल्ली, आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर, आदरणीय परम पूज शिवयोगी नंदगिरी महाराज मठाधिपति पुना महाराष्ट्र से, आदरणीय आचार्य श्री परमानंद जी महाराज कटनी से, आदरणीय संत शिरोमणि रोहित दास जी महाराज खटूशा मंदिर भरतपुर, आदरणीय आचार्य श्री जालेश्वर दास जी महाराज मानस रत्न अयोध्या धाम, बीके नारायण भाई जी जनरल जोनल कोऑर्डिनेटर धार्मिक प्रभाग इंदौर, आप सबको आज इस महाकुंभ में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। देखो, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, सिर्फ हमको 100 ब्रह्मचारी मिला तो बस मैं भारत का नक्शा ही परिवर्तन करूंगा। लेकिन आज आप देखेंगे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज के अंदर कम से कम 50,000 बहने भाई स्व इच्छा से तन मन धन समय श्वास सारे विश्व के कोने कोने तक जाकर के, खास आप देख लो आज आप और हम यहां किस आधार से आए, कौन लेके आया हमको। तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हर एक कोने कोने में जाकर आप और हम सबको आज ये महाकुंभ में एक स्टेज पर इकट्ठा किया है। लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? हम उस सदगुरु के संतान गुरु है, वो एक सदगुरु है। तो ये सभी गुरुओं का सम्मेलन है महाकुंभ कहा। इस महाकुंभ के अंदर क्यों आए हम? सदगुरु वो है तो वो सबको क्या देता है? सुख शांति संपत्ति देता है। मनुष्य को इस सृष्टि पर जीने के लिए सुख शांति चाहिए, वो यहां नहीं मिलता है। कितना भी आप खर्चा करो, कुछ भी करो, दाता एक है। वो कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम का, गॉड इज तृप्त का सत्य है। तब कहते हैं सदा शिव है, एक दिन के लिए नहीं, सदा है। तो उसके हम सभी संतान, हम भी कौन है? हम भी साधारण नहीं, उस परम पिता शिव परमात्मा के संतान। आज हम एक ऐसे स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, इसको कहते हैं ज्ञान सरोवर। ये ज्ञान मान सरोवर में एकत्रित हुए हैं। ये सभी हमारी बहनों की मेहनत है। क्यों पूछेंगे आप? भारत माता कहा। इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही शक्ति है, प्रकृति और पुरुष। मां प्रकृति पुरुष परमपिता शिव परमात्मा से मिलाने के लिए हम और आप सबको इस महाकुंभ में आमंत्रित किया है। हम सब क्यों इकट्ठा हुए? क्या लक्ष्य तो कुछ होगा, क्यों आए हम? या किसने हमको बुलाया? तो वो महाशक्ति का शिव वो है। शिव शक्तियों ने तन मन धन समय श्वास, आप देखेंगे एक एक बहनों ने एक एक कोने कोने में जाके एक एक संतों के पास 10-12 दफा जा करके उनको निमंत्रण दे करके उनको समझा करके यहां तक पहुंचाने की जो मेहनत किया है। तो हमारे सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को हम और आप सभी मिलके एक बार वंदन करेंगे ताली बजाकर, क्योंकि उनकी मेहनत के बगैर आप और हम यहां पहुंच नहीं सकते हैं। सही बोला मैंने? अगर आप चाहो हम इधर आना है, नहीं आ सकते हैं। तब कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में क्या सिखाते आप पूछेंगे? ज्ञान है तो यहां क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तब का स्वस्थ जीवन के लिए और स्वस्थ समाज चाहिए। हर एक चाहता है स्वस्थ जीवन, कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा। सारा समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हो, किस आधार से होगा? भारत के अंदर कोई शास्त्र ज्ञान कोई कमी नहीं है, हर कोने कोने में मंदिर सब कुछ है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, इसलिए सारा विश्व कहता है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन। हमारी पढ़ाई के अंदर किसकी कमी है? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। और हम भी कॉलेज पढ़ते समय हमने भी देखा, ये ज्ञान सुनने के बाद देखा इस ज्ञान के अंदर क्या चीज नहीं है जो दुनिया में शास्त्रों में कभी भी नहीं सुनाया। एक भारत देश है, देख लो, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। सिर्फ दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं, विधि है, अंगुली से अंगुली जोने विधि पूर्वक। हमने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर
जब पढ़ाई पढ़ता था मैं, तब से देखा कि कहा सारी दुनिया के अंदर फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे आप और हम सभी बैठे देख रहे हो, मुझे ही देख रहे हो, सुन भी रहे हो, फिर भी कहा जाता है प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दीजिए। तो ध्यान क्या है, क्या दे दो, मैं देख रहा हूं सुन भी रहा हूं। तब कहा लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद पढ़ने के बाद समझ चाहिए। वो समझ कहां मिलती, किस मार्केट में मिलती है, वो सद्गुरु आता है दिव्य बुद्धि देने के लिए। और आज आप देखना, आप कहेंगे इधर ही क्यों आया, आज भारत के एक माता भी कोई मंदिर में जाती है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। जिसकी कमी है आज, बुद्धि नहीं है तो समझ नहीं है, अगर ज्ञान सुनने के बाद समझ में आया तो आचरण में आता है। तो आचरण तक आने, हमारा जीवन को अगर हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज को भी स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। वो क्या है, तो बुद्धि का ज्ञान नहीं चाहिए। सारे स्कूल में कहा फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए। अभी मुझे लग रहा मुझे आप ही सुन देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, मैंने अभी क्या कहा बताओ, समझ में नहीं आया, समझ कहां है। वो सद्गुरु आया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर के ये विद्यालय की स्थापना करता है। सारे विश्व में 140 देशों में, भारत के हर कोने कोने में जाकर, तब का भारत माता, उन्होंने आकर के अपने पिता का परिचय दिया। और आप और हम सभी इसलिए इकट्ठा हो गए, ये महाकुंभ कहा, इस कुंभ के अंदर अगर हम आकर अपना स्नान, इसको ज्ञान सरोवर भी कहते हैं, इसमें आप ज्ञान की डुबकी लगाते हो तो पवित्र आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था है कि पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं इस सृष्टि में जो संपत्ति है उसका उपभोग कर सकता है। अब भारत आज भी गरीब नहीं है, भारत के अंदर सब कुछ है, लेकिन भारत में रहने वाले हम और आप सभी गरीब है, किसमें, आध्यात्मिक शक्ति में। अगर हमारे अंदर वो स्वच्छता है तो संपत्ति हमारे चरणों पर है। इसलिए कहा फिजिकल क्लीननेस एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता का क्या है, वो हमारा जीवन स्वच्छ हो, विचार स्वच्छ हो, तो समाज में हम सबके साथ हैं, हम अकेले नहीं है। तब कहा वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड, एक परिवार, फैमिली है। कहते हैं हम आचरण में अगर हमारे अंदर तप आएगा, जब हमारे अंदर वो स्मृति, कहा क्या स्मृति है, गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ये मोह माया के से हम मुक्त होना चाहते हैं, कैसे होंगे आप, कोई भी क्रोध छोड़ सकते हो, कहां छोड़ेंगे, सोच लो, आप अपने आप से पूछ लो कैसे छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ करना है। क्या करना, अगर इस मोह माया से मुक्त होना चाहते हो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, स्मृति सिर्फ मैं कौन और मेरा कौन है। कोई भी व्यक्ति नीचे से नहीं आया, कब किसी ने भी शरीर छोड़ा, चाहे कोई भी धर्म है, किसी को, हर एक ने कपड़े रंगीन पहने, किसने सफेद पहना है, किसने और कुछ कहे, कपड़े यहां आने के बाद आए कहां से, एक ही धाम है, एक ही ब्रह्मांड सब आए हम, और एक ही ब्रह्मांड में जाएंगे और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, तो हम आपस में कौन हो गए, एक परिवार, एक ही जगत है, कोई इधर कोने में, कोई इधर कोने में नहीं था, एक ही जगह था, एक ही जगह से आए, कहां जाएंगे कल, एक ही जगह जाएंगे। तब कहा कि आज देखो सभी मंच पर एक ही मत होकर के संगठित रूप में सभी है, ऐसे हम सर्वधर्म सम्मेलन भी कहते हैं, सभी धर्मों को एक स्टेज पर बिठाते हैं, और स्व इच्छा से, हर एक स्व इच्छा से आता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है सभी एक हो जाए, संगठन के अंदर एक शक्ति है, यूनिटी इज पावर। आप अलग हो, आप अलग हो, कपड़े अलग अलग है, आत्मा एक है। ये हमारे बुद्धि के अंदर, स्मृति में अंदर है। सबके प्रति कोई कैसा भी हो, हर एक का अपना अपना बोल, आचरण, व्यवहार, मान्यता अलग अलग है, हो सकता है। सभी एक जैसे नहीं हो सकता। एक ही मेरा हाथ एक जैसे नहीं है। एक अंगुली मोटी है, एक अंगुली बारीक है। अगर एक बारीक नहीं चाहे काट लो तो ग्लास उठा सकते हो। सबका सहयोग चाहिए, सबका सब मिल करके हम एक है। आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो, लक्ष्य रखो अपने अंदर, दृढ़ संकल्प ले लो, हम एक है। सबका सनातन संस्कृति है ये, या और कितने आदि सनातन का बाद में नहीं आए, शुरू से ही आदि सनातन संस्कृति से हम जीवित, हम आए इस सृष्टि पर। हमारा लक्ष्य, हम सब एक है, एक परमात्मा के संतान है। कौन है परम पिता? शिव परमात्मा के संतान है, वो निराकार है। तब का सत्यम शिवम सुंदरम। तो अगर आप सभी मानते हो, आज उसी लक्ष्य है। और ये तीन चार दिन आप और हम इधर होंगे, अच्छी तरह से आओ बैठो, कि आपका घर है ना। जैसे हम सभी एक ही घर में थे, एक ही घर से इधर आए, ब्रह्मांड से इधर आए, ये भी आपका घर है। मेहमान नहीं समझना, अपना घर अधिकार से। लेकिन हम सभी एक है ये समझने का निश्चय करते हो तो साथ सभी हाथ उठाओ एक जगह पर एक दफा। हम सभी एक है, स्टेज वाले भी बताओ, हम सभी एक है, दो नहीं है, एक। एक मत के अंदर ताकत है। यही हम भी चाहते हैं, आप भी चाहता, सारा विश्व चाहता है। लेकिन एक नहीं होंगे, अलग अलग विचार है, ये कुछ कह रहा है वो, हाँ कहते हैं, भाषा अलग है ना, भाव एक ही है। तब का भाषा अलग है, भाव शुद्ध भाव, आत्मा का शुद्ध भाव एक ही है। तो ये भाव लेकर के हम सबने आज, आप सबको, आप भी आए, हम भी आए, आज सभी ये संत महंत महामंडलेश्वर तपस्वी आचार्य पंडित योगी सभी एक जगह पर इकट्ठे, ऐसे हर साल अब थोड़े समय हम इकट्ठा होकर के ऐसे संगठित रूप में ऐसे शुभ संकल्प करेंगे तो सब कुछ संभव है। भगवान उसको कहते हैं असंभव को संभव करता है। तो ये भगवान की ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम और आप सब बैठे, ये हमारा किसी का नहीं, ये हम सबका है। भगवान एक का नहीं होता है, वो सबका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बार बार आते रहिए, आपका अपना घर समझ करके आइए। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता रामनाथ भाई जी का, जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। आपने बहुत सुंदर स्वागत भी किया और आध्यात्मिकता का अर्थ भी बताया, जिसमें एक बात मुझे याद आती है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब तक आत्मा चित्यो नहीं तब तक सर्व साधना झूठी। और आध्यात्मिकता का सार भी यही है कि सभी साधना का जो आधार है वो है मैं कौन, मेरा कौन। मैं यानी मैं आत्मा, मैं स्पिरिट, मैं लाइट, मैं ज्योति, मैं प्रकाश। अगर जिसने इसे को ही समझ लिया उसकी साधना सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। अभी हमारे बीच में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अति अति परम आदरणीय तपस्वी मूरत ममता मई, सदा चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी राजयोगी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज ये प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज कैसा हो, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय मनोरमा दीदी जी अध्यक्षा हैं धार्मिक प्रभाग, और आप इलाहाबाद प्रयागराज में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आपके संचालन में 100 से भी अधिक ईश्वरीय सेवा केंद्र का आप संचालन करते हैं। आपने बाल्यकाल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया और बाल्यकाल से ही आप आध्यात्मिकता का प्रकाश देश विदेश में फैला रहे हैं और आप विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाला कुंभ का मेला, उसकी आप बहुत विशाल रूप से सेवाएं संभालती हैं और साथ साथ दीदी का विशेष साधु संत महात्माओं से बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है और दिल से सभी की सेवाएं करती है। तो दीदी जी के लिए एक ताली तो बनती है। मैं दीदी जी के लिए कहना चाहती हूँ, आप ज्ञान का प्रयोग हो और राग हो प्रयाग का, आप राज है वैराग्य का, प्रयास हो तुम त्याग का, वाणी का आप कौशल है, बुद्धि की विशालता है, लिखने की आप धनी हो, कुंभ की आप शान हो, कुंभ की आप शान हो, ऐसी हमारी मीठी मनोरमा दीदी जी आज सम्मेलन का लक्ष्य हम सबको बताएंगे।
ओम शांति। आज की पावन सांध्यकालीन वेला में बहुत ही सुंदर समागम हमारे आज के मंच पर विराजित हमारे परम पूजनीय आदरणीय संत वृंद, जो साधना के जगत में महामंडलेश्वर हैं, महंत श्री हैं, आचार्य श्री हैं, योगाचार्य हैं, कथावाचक हैं, विभिन्न धाराओं से जुड़े हुए सबका हार्दिक वंदन। मंच पर अग्रिम पंक्ति में विराजी हुई परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, लेकिन जहां हमारे धर्म ग्रंथ पहुंचे, वेद पहुंचे जर्मनी की उस धरा पर, वहां आपने जाकर अलग जगाई, तो भारत से लेकर विदेश के लगभग 100 देशों तक परिक्रमा करके आपने आध्यात्म की ज्योति फैलाई। हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी, मंच पर विराजमान राजयोगी भ्राता करुणा जी, जो मल्टीमीडिया के चेयरपर्सन तो हैं ही, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपने बहुमुखी प्रतिभा से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विकास में एक एक ईंट लगाई है। मैं बहुत विस्तार से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी सहयोगिता से आज आधुनिकता और आध्यात्म का संगम हुआ। हमारे बीच मौजूद भ्राता रामनाथ जी, जिनसे आप भली भांति वाकिफ हैं, जब से धार्मिक विंग में उन्होंने अपना मुख्यालय संयोजक का पद संभाला है, विधिवत आपके साथ जुड़े हुए हैं। भ्राता नारायण जी, राजिम मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शासन की ओर से लगने वाले कुंभ में संतों का कार्यभार स्वागत सत्कार संभालते आए हैं विद्यालय की ओर से। तो हमारे बीच मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद और सभा में उपस्थित हम आप सबका भी हृदय से कोटि कोटि वंदन करते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मंच पर जिन्होंने मशाल उठा रखी है उनके पीछे आप सब हैं। ये गृहस्थ आश्रम में जीने वाले, समाज में खड़े होकर ट्रस्टी बनने वाले, वो मंदिरों से जुड़े हों, वो किसी मठ से जुड़े हों, सनातन की किसी धारा से जुड़े हों, लेकिन जो स्रोत हैं उनकी ऊर्जा का वो आप सब हैं। तो आप सबका भी कोटि कोटि वंदन है और आज इस विशाल कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए। भारतीय वांग्मय दर्शन में षट दर्शन कहते हैं, बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी धाराएं प्रवाहित होती रही हैं। समय समय पर संतों ने आकर एक नई धारा शुरू कर दी, और ये नई धारा केवल स्वयं को प्रतिष्ठित करना है इसलिए नहीं कि समाज को कैसे आदि संस्कृति को, सनातन संस्कृति को हम अच्छी तरह पल्लवित कर सकें। वेदों में, कूट उपनिषद में उसकी थोड़ी व्याख्या, फिर शास्त्रों में उससे आगे बढ़कर व्याख्या, और उसके बाद पुराणों में उससे आगे बढ़कर कथा, कहानी, किस्सों के माध्यम से। उद्देश्य मात्र एक था हमारे संतों का कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसे मानव के मस्तिष्क में कैसे बीजारोपित करें, कैसे पल्लवित करें, और उस पल्लवन के लिए सनातन की बहुत सारी शाखाएं मौजूद हैं। हम मंच पर भी देख रहे हैं कि हमारे बीच विभिन्न धाराओं की ये दैदीप्यमान प्रज्वलित ज्वाला स्वरूप साधना प्रमुख बैठे हुए हैं। किंतु आज जो विषय रखा है हमारे बीच, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी कोकिला मठ से, भदंत करुणाकर महाथेरा जी महासचिव बौद्ध धर्म फर्रुखाबाद से, बहुत बार हमारे बीच हमारे साथ साथ चले, आज पुनः मंच पर हैं आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से, आचार्य श्री जालेश्वर दास जी महाराज मानस रत्न अयोध्या धाम से, आचार्य श्री परमानंद जी कटनी से, संत शिरोमणि रोहित दास महाराज खाटू श्याम से, परम पूज्य शिव योगी नंदगिरी महाराज मठाधिपत पूना से, और भी जिन्हें आप देख रहे हैं द्वितीय पंक्ति में, तृतीय पंक्ति में, उत्तरोत्तर ये सब हम सब के साथ बहनों के स्नेह के साथ उस सूत्र में बनकर यहाँ पधारे। सबका हृदय से वंदन अभिनंदन, और सनातन संस्कृति के आधार आध्यात्म की जो चर्चा अभी हमारे हमसे पूर्व वक्ता भ्राता रामनाथ जी कर गए, तो जब जब हम आध्यात्म की चर्चा करते हैं सबसे पहले सनातन को ले लें। सनातन की जब व्याख्या की जाती है तो कहते हैं सदातन। इस सनातन का आदि कौन, जो अनंत है, जो अनादि है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, और वो जगत नियंता है। संस्कृत में जब सदातन कहते हैं हिंदी में आके सनातन हो जाता है। तो उस जगत नियंता ने जिस आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति फैलाई, उसने जो संस्कृति निष्ठ नीति वचन उच्चारे, जिसने कथनी और करनी को एक करने का पाठ हम सबको सदैव पढ़ाया, उस सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्म। और जब आध्यात्म की व्याख्या करते हैं तो उसका तात्पर्य है अध्ययन प्लस आत्म, आत्मा का अध्ययन, और उस आत्मा के अध्ययन से उत्पन्न होता है भाईचारा। सबसे बड़ी चीज कि जब हम प्रत्येक प्राणी मात्र को आत्मिक भाव से देखना प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर शुचिता का संचार होता है। न कोई जाति, न कोई वर्ण, न कोई वर्ग, आत्मिक भाव से आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव लेकर जब एक दूसरे को देखना प्रारंभ करते हैं तो जो बंधुत्व की मधुरता का संचार होता है वो भारतीय संस्कृति को पल्लवित करता है। तो आध्यात्म के लिए सबसे पहले आत्मा के उस स्वरूप को जानना। जब गीता की बात आती है और ये कहा हे अर्जुन, अरे तुम्हें तो केवल निमित्त बनना, ये तो सब। तो नश्वरता का ज्ञान दिया, अनश्वरता की बात की, नश्वर शरीर है आत्मा नहीं, वो तो अनश्वर है। तो जब ये कहा सब मरे हुए है कौनते उत्थिष्ठ उठो, किसको क्या समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि केवल कौरवों की बात की, पांडवों में भी बहुत शरीरधारी थे। तो जो नष्ट होने की बात की गई, वो हमारे अंदर जो संस्कारहीनता पल्लवित होने लगी समाज के अंदर, उस संस्कारहीनता को समाप्त करने की बात की गई। शरीर मारे जा सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को समझने के लिए आत्मा के उस भाव को समझना होगा जहां पवित्रता शुचिता विद्यमान होती है। और ये पवित्रता की जगह आज समाज में घर घर जो व्याप्त हो रहा है, हमें उसे समझना होगा। हमने अपनी भौतिक प्रगति के लिए चांद को नहीं छोड़ा, सूर्य का पीछा करने में भी लगे हुए हैं, लेकिन आवश्यकता है आध्यात्मिक प्रगति की। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए समझना होगा। कहते हैं एक बार एक जंगल में जा रहे थे तो चार महिलाएं मिली। उन्होंने पूछा, भाई आप सब कौन हैं, कहां जा रहे हैं? तो जवाब दिया उन्होंने कि मैं बुद्धि हूं, मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करती हूं। दूसरी ने कहा लज्जा हूं, आंखों में निवास करती हूं। तीसरी ने कहा हिम्मत हूं, हृदय में निवास करती हूं। चौथी ने कहा सेहत हूं, पेट में निवास करती हूं। अभिवादन करके और आगे बढ़े तो उस पथिक को चार भाई मिले। उनका अभिवादन करके परिचय पूछा, बोला मैं क्रोध हूं। कहां रहते हो? बोला मनुष्य के मस्तिष्क में। बोला वहां तो बुद्धि रहती है। बोला जब मैं आ जाता हूं तो भाग जाती है। जब दूसरे से पूछा तुम, बोला मैं लालच। कहां रहते हो? बोला आंखों में। बोला वहां तो लज्जा रहती है। अरे बोला जब मैं आता हूं तो लज्जा कहीं नहीं रहती। दूसरे से पूछा तो उसने बताया कि मैं अस्वस्थता हूं, कहां रहता हूं? पेट में। तो स्वाद के रूप में पेट में निवास करता हूं। चौथे से पूछा तो उसने भी अपना स्थान बताया। तो जीवन में जब ये विकृतियां प्रवेश करने लग जाती, तो इन विकृतियों के चलते जो आत्म ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए हर समय, विवेक की आभा से मानव का स्वरूप दैदीप्यमान रहना चाहिए, वो विवेक कुंठित होने लगता है। तो पाकीजगी चाहिए, विवेक का प्रकाश चाहिए, वो बुद्धिमत्ता जो लोभ होने लगती है उसे स्वयं जगत नियंता कर देता है। बुद्धिमानों का बुद्धिमान वो स्वयं परमपिता परमात्मा है, क्योंकि कुछ और नहीं कहा था। कहा था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो उस प्रवृत्ति और निवृत्ति का निराकरण करने के लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जिसके लिए कहा गया कि जब जब होय धर्म की ग्लानी, बाढ़ाई अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हर ही सकल सज्जन की पीड़ा। वो जगत नियंता धरा पर आता है। और अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं को वो सौभाग्य प्राप्त है जब जगत नियंता ने यहां आकर पुनः नव सृष्टि का सृजन किया, प्रजापिता ब्रह्मा को उसका आधार बनाया, और यहां से जो दीप प्रज्वलित हुआ। कहते हैं चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। हमारे ये संत वृंद जहां रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे। ठीक उसी तरह आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारतवर्ष में अपनी हजार हजार शाखाओं के माध्यम से, और न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी देशों में भी इस सनातन की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। इसीलिए आज खास तौर से ये सम्मेलन रखा गया कि स्वच्छता बाह्य जगत की नहीं चाहिए। स्वच्छता के कोरोना के समय बार बार ये अनाउंस किए गए, हाथ धोइए 10 मिनट, लेकिन मानसिक स्वच्छता भी चाहिए। केवल हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, मन को धोना पड़ेगा। और मन को धोने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय निरंतर प्रयास कर रहा है। तो पवित्रता मन की, वाणी की, कर्म की चाहिए। अहिंसा वो चाहिए जो केवल बाहर की नहीं मन के अंदर से ईर्ष्या और द्वेष को मिटा दे। प्रेम वो चाहिए जो दिखावे का ना हो, निस्वार्थ भाव से जिसका प्रतिदान हर एक की आंखों में झलकता दिखाई दे। वो आनंद चाहिए जो मन में हर समय गुलशन बनाता रहे। तो आज आप सबका आवाहन जो यहाँ हुआ है, विशेष इसीलिए कि हम सब एक पथ पर एक साथ आध्यात्म की ज्योति को जलाए रखें और कदम से कदम मिलाकर मानवता का कल्याण करते रहें। इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। अभी सबके विचार सुनेंगे, क्योंकि सभी ज्ञान के सागर बैठे हुए हैं यहाँ, उस मास्टर ज्ञान सागर के सुपुत्र हैं, बहनें सुपुत्रियां हैं, तो रोज ही इस संगम में डुबकी लगाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। आपने बहुत सुंदर इस सम्मेलन का उद्देश्य बताया। त्रिदिवसीय आप इसी तरह से हमारे संतों के द्वारा और हमारी वरिष्ठ दीदियों के द्वारा आप अच्छी अच्छी अनुभव की बातें सुनेंगे। और अभी आज आप कोई जाएंगे नहीं, आप सबको गिफ्ट मिलेगा, फिर बाद में किसी को गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो प्रोग्राम के बाद सभी को गिफ्ट दिया जाएगा। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर ड्रामा लेकर के हमारे बीच में बच्चे आ रहे हैं, जो कि दीदी ने जिस उद्देश्य को बताया कि आध्यात्म क्या है और आध्यात्म का जीवन सिर्फ साधु संतों के जीवन में नहीं है महत्व, लेकिन आध्यात्म का महत्व हर वर्ग के लोगों को है, कैसे है, क्या जरूरी है, किस प्रकार से आध्यात्मिकता का उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए एक सुंदर ड्रामा देखेंगे, पटेल नगर की बच्चों के द्वारा एक सुंदर ड्रामा की प्रस्तुति आप सबके सामने।
गुड मॉर्निंग मिस्टर आदेश एंड मिस हर्षिता। तो ये आपके इंटरव्यू का आखिरी राउंड है। मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और जिसका आंसर हमें ज्यादा पसंद आया उसे ही हमारी कंपनी हायर करेगी। आर यू रेडी?
यस सर, प्लीज पूछिए।
ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में हेल्थ और क्लेनलीनेस की प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की हेल्थ और वेलबींग के लिए ही काम करती है।
जी सर।
तो मिस्टर आदेश, प्लीज ये बताइए कि आपकी नजर में एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी किसे कहेंगे?
वेरी सिंपल सर, एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी उसे कहा जाएगा जहां हर 5 किलोमीटर पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, ताकि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो सके और हर थोड़ी दूरी पर डी एडिक्शन सेंटर्स भी हों। और आज समाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हर 2 किलोमीटर में एक पुलिस स्टेशन जरूर होना चाहिए, पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर्स एंड गार्बेज डंप्स हों, ताकि समाज में स्वच्छता बनी रहे।
वेरी इम्प्रेसिव आदेश, आपने तो एक सोसाइटी में उठने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा है। आपकी जैसी सोच ही हमारी कंपनी को चाहिए। मिस हर्षिता, क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी?
सर, मेरी कल्पना में तो एक क्लीन और हेल्दी सोसाइटी कुछ और ही दिख रही है। एक आइडियल सोसाइटी में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई कोर्ट, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, पोल्यूशन टेस्ट, डी एडिक्शन सेंटर, ये सब कुछ भी नहीं होगा सर।
मिस हर्षिता, व्हाट डू यू मीन?
सर, क्या एक परफेक्टली हेल्दी सोसाइटी का मतलब ये नहीं जहाँ कभी कोई बीमार ही ना हो? तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत? एक हेल्दी सोसाइटी तो वो है ना जहाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियाँ ही ना हो, कोई एडिक्शन ना हो। तो डी एडिक्शन सेंटर्स की क्या रिक्वायरमेंट है?
That's impossible. ऐसा कोई समाज कभी हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता सर? आखिर ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज का कारण हमारी मेंटल हेल्थ ही तो है।
मेंटल हेल्थ? देखिए, आप जो भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, थैंक यू। अब आप दोनों जा सकते हैं, हम आपको 2 दिन में रिजल्ट बताएंगे।
ओके, थैंक यू सर।
डॉक्टर मानस
आइए। मिस्टर गुप्ता, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था।
डॉक्टर मानस, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था कि उस दिन इंटरव्यू के बाद।
यस मिस्टर गुप्ता, मुझे याद है। आपके मन में यही प्रश्न घूम रहा है ना कि क्या फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से कोई रिलेशन है?
यस डॉक्टर, आप एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आप ही मुझे गाइड कीजिए।
जरूर, मैंने 2 पेशेंट्स के ब्रेन वेव्स के सैंपल लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके मैं उनके मन की स्थिति को कैप्चर कर पाया हूँ। शारीरिक बीमारी तो दोनों की एक ही है, लेकिन इनके स्टेट ऑफ माइंड में रात दिन का अंतर पाया गया है।
रियली डॉक्टर?
आइए आपको इनके मनोस्थिति की वीडियो दिखाता हूँ।
सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
हे भगवान, मुझे ही ये बीमारी होनी थी। ये दुख, ये दर्द कब जाएगा?
दिन सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे, हर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन सुंदर सा आज कुछ कर गुजरे।
बीमारी तो आई है और चली जाएगी, लेकिन मुझे हमेशा खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटनी है।
अरे, तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी? उस मर्डर केस का मुजरिम फाइनली पकड़ा गया। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे।
हाँ, पुलिस और कानून तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें तो उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी चाहिए ताकि वो अपने में परिवर्तन ला सके।
मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से।
अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम्हें पता चला ऑफिस में रोहन की प्रमोशन हो गई है?
क्या, रोहन की प्रमोशन हो गई? लेकिन इस साल तो मेरी प्रमोशन होनी थी। रोहन को तो बॉस के आगे पीछे घूमने के अलावा आता ही क्या है?
ऐसा मत सोचो भाई, जरूर तो डिजर्व करता होगा। स्टे पॉजिटिव, तुम्हारी भी प्रमोशन जरूर होगी। दुआएं दो तो दुआएं मिलेंगी।
दुआएं? वो भी उस रोहन को? कभी नहीं।
उठाते हैं वो उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
दर्द खिदमत सबकी दुआएं तजल, वर्ष कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू हम सबकी जिंदगी का सफल।
अनबिलीवेबल, इसका मतलब पूरे दिन में हम अननोइंगली व्यर्थ और नेगेटिव बातों का बोझ, डर, चिंता, हर्ट अपने मन पर लेकर चलते हैं।
एग्जैक्टली, जिसका असर फिर कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर जरूर पड़ता है।
ये तो एक बहुत बड़ी रेवलेशन है डॉक्टर।
बिल्कुल। एंड ऑन द अदर हैंड, जो लोग हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं, सबको सुख देकर दुआएं कमाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। तभी तो इस दूसरे पेशेंट की रिकवरी पहले पेशेंट के कंपैरिजन में बहुत फास्ट हो रही है।
इंटरेस्टिंग। लेकिन आज के इतने नेगेटिव जमाने में हमेशा मेंटली फिट रहना पॉसिबल ही कहाँ है, और इंडिया में तो हमेशा से ही बीमारियां रही हैं।
लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मेरा तो नजरिया ही बदल गया। शायद तुम्हें भी अपने सवालों के जवाब इसमें मिले।
बुक भारत का स्वर्णिम इतिहास, आओ चलें सृष्टि के आदि काल में, जहां भारत संपूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ था।
सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। मैं हूँ भारत का स्वर्णिम इतिहास, आदि काल में स्वच्छता और पवित्रता का था वहाँ बसेरा, बेहद सुख की धूप और शांति का सवेरा, सदा स्वस्थ तन और मन थी उस भारत की पहचान, दुख रोग और पीड़ा से था वो बिल्कुल अनजान।
अच्छा, और क्या था उस भारत में?
उस भारत में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था, तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर, तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था, संसार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, और देवी थी संस्कृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति, ओ सृष्टि के आदि काल में।
अनबिलीवेबल, क्या सच में मेरा देश कभी ऐसा भी था? लेकिन आज तो ऐसा नहीं, ऐसा क्या अंतर हो गया है तब और अब के भारत में?
उस भारत में शरीर का कोई भान नहीं था, तभी तो दुख पीड़ा का नाम निशान नहीं था, हर एक को थी आत्मा सितारा होने की स्मृति, ऐसी पावन थी उसकी प्राचीन संस्कृति, सुख शांति प्रेम से भरपूर थे सारे, पांच विकारों की मैल नहीं, मन स्वच्छ थे हमारे,
स्वच्छ मन, वाओ। और स्वास्थ्य, उसका क्या आधार है?
स्वस्थ मन ही है तंदुरुस्ती का आधार, आत्म स्वरूप में टिकने से होता है शक्ति का संचार, जिसके तन और मन में है पवित्रता का वास, संपूर्ण निरोगी जीवन का वरदान है उसके पास।
आत्मिक स्मृति, संपूर्ण निरोगी जीवन, क्या फिर से मेरा भारत इतना महान बन सकता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा?
जरूर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में जुड़ेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए गए राजयोग से ही संभव है। हम करें प्रतिज्ञा मिलकर कोई संस्कृति लाएंगे, सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे, करें प्रतिज्ञा।
क्या मिलकर हम कोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान।
अमेजिंग, अब मुझे समझ आ गया है कि अगर इंडिया को क्लीन और हेल्दी बनाना है तो हमें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही एक स्वस्थ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है।
भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे।
बहुत सुंदर, इन कलाकारों के लिए जोरदार ताली हो जाए। स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत की कल्पना या भारत कैसा होगा वो दृश्य हम सबके सामने रखा। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अति अति परम परम आदरणीय तपस्वी मूरत, त्याग की मूरत, नैनो की रूहानी नूर से भरपूर ऐसी महान विभूति को मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, हमारी परम आदरणीय राजयोगी सुदेश दीदी जी को, जो कि आप निदेशिका हैं ज्ञान सरोवर, जिस ज्ञान सरोवर परिसर में बैठे हो इसका आप बहुत ही सुंदर रीति से संचालन करते हैं। तो एक बार हमारी आदरणीय दीदी जी के लिए जोरदार, दीदी जी के सम्मान के लिए जोरदार ताली हो जाए। दीदी जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, लगन निष्ठा और समर्पण के मिसाल हो आप। लगन निष्ठा और समर्पण के मिसाल हो आप। हर संकट का बेजोड़ जवाब है आप। जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जितने बड़े उस पे बहुत सारी परिस्थितियां आती है ना। हर संकट का बेजोड़ जवाब है आप। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, नेतृत्व क्षमता में पारंगत है आप। नेतृत्व क्षमता में पारंगत है आप। धर्म धैर्य सादगी और ममता की मूरत हो आप। धर्म धैर्य और सादगी ममता की मूरत हो आप। ऐसी आदरणीय दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ईश्वर विश्वविद्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के समय से ही आपने उनकी सानिध्य में रह करके, उनकी पालना में पल करके अपने जीवन को आध्यात्मिकता से भरपूर, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण किया। आदरणीय दीदी जी न सिर्फ भारत की लेकिन भारत के अलावा पूरे विश्व के, जर्मनी, रशिया, लंदन, अमेरिका सभी स्थानों पर जाकर के आप अपनी वाणी से सभी आत्माओं को सुख शांति की अंचली देकर के उनको लाभान्वित करती हैं। और साथ साथ हमारी आदरणीय दीदी जी ज्ञान सरोवर की निदेशिका तो है ही है, लेकिन जर्मनी की आप सेवाएं, वहां के भी आप निदेशिका हैं। तो आप ये देखो, भारत का भी संचालन करते हैं और जर्मनी के और अन्य स्थानों का भी आप विशेष रूप से सेवाएं करते हैं। और आपकी सबसे बड़ी विशेषता है आपकी मंद मंद जो मुस्कुराहट है, वो सभी के मन को, सभी के दिलों को भरपूर कर देती है, मोहित कर देती है, क्योंकि वो सदा यही कहती है कि मुझे मेरी मुस्कुराहट देने वाला वो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान परमात्मा है। उसने मुझे सब खुशियों से भरपूर किया है, इसीलिए मैं अपनी मुस्कुराहट पूरी संसार को बांटती हूँ। ऐसी हम अपनी परम आदरणीय दीदी जी से आज के सम्मेलन का एक आशीर्वचन हमारी प्यारी दीदी जी से हम लेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, या कहूं ओम प्रेम। मंच पर विराजमान मेरे अति प्यारे भाई, महामंडलेश्वर रूप में, योगेश्वर रूप में, आचार्य स्वरूप में, अथवा किसी भी प्रकार से जो भी सेवा केंद्र कर सेवा करते, टाइटल कहां सभी किस भी प्रकार से मिला है, आगे पीछे बैठे हुए, मेरे साथ बैठे हुए या मेरे पीछे बैठे मेरी बहनें और मेरे सामने बैठे हुए मेरी बहनें और मेरे भाई, किस किस का नाम लूं और किन किन का नाम ना लूं, कितनों की माला जपूं और कितने मणकों को छोड़ दूं, यह कैसे हो सकता है। इसलिए हृदय से, मन की शुभ भावना से सबके प्रति सम्मान, स्नेह, सत्कार, सद्भावना स्वीकारो। आप वास्तव में कहने में आता है ये सत्य स्वागत सत्र है, वेलकम का है, परंतु आप तो अपने घर में आए हैं, आप तो अपने घर में आए हैं, घर में तो वेलकम की बात ही नहीं, घर तो आपका अधिकार है, यहाँ तो आपका ईश्वरीय प्यार है, यहाँ तो सबको स्नेह और सम्मान है। बेशक स्टेज पर आप यहाँ बैठे हैं और जो नीचे बैठे हैं वो भी स्टेज पर बैठे हैं, क्यों कि हम सब परमात्मा के हृदय रूपी तख्त पर विराजमान है। तो आप जो सभी परमात्मा के हृदय तख्त पर विराजमान है, क्योंकि सिद्ध करता है कि आप इस ये दो महीने से हमारे पास 25 अलग अलग प्रकार की विंग्स हम कहते हैं अथवा क्षेत्र हैं सेवा के लिए, वैज्ञानिक हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, महिलाओं का है, मतलब अलग अलग शाखाएं, अलग अलग एरिया है सेवा के लिए, ग्रामीण हैं और आज धार्मिक सेवा विभाग में धार्मिक प्रोग्राम के लिए आप आए हैं। ये क्या सिद्ध करता है, आपको किसने आकर्षण किया है। निमंत्रण, इनविटेशन तो एक बहाना है, मैं तो आपके जो मन को पढ़ रही हूँ, आपने कभी न कभी और कई बार सोचा है, टीवी में देखा है, ओम शांति चैनल में देखा है, पीस ऑफ माइंड में देखा है, अवेकनिंग में देखा है, सोचा कभी ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर पर जाऊंगा जरूर, पर निमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा ना, है ना। ये बात मैं आपके दिल की बात पढ़ रही हूँ ना, कर रही हूँ आपके दिल की बात, आपके मुस्कराते चेहरे बता रहे हैं कि आपके मन की भावना तो थी, परंतु आज निमंत्रण से आए, परंतु अपने घर में आए हैं, इसीलिए घर वालों के लिए विशेष कोई स्वागत के प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं है, परंतु नहीं तो दर्शन कैसे कराएं। जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने इतना अपनी रीति से अध्यात्म का अभ्यास किया, योग किया, आचार्य रूप में अन्य आत्माओं को दृश्य दिखाया अब उनका दर्शन तो आपको होगा ना। इसीलिए ये तो सिर्फ दर्शन मूरत सामने बैठे हैं और आप प्रसन्न मूरत सामने बैठे हैं। इसीलिए मन का प्रश्न कि हम जाके देखें तो सही, परंतु ये तो देखने की चीज है अनुभव। देखना सिर्फ आंखों से नहीं, सुनना सिर्फ कानों से नहीं, देखना दिल से जो दिखाई पड़ता है वो तो अनुभव के दर्पण से दिखाई पड़ता है। और आध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता है क्या? भक्ति हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। भक्ति में वेद शास्त्र पुस्तक पोथियां पुस्तक बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें मार्ग पर चलने की बताई गई हैं। आज भी हमने पढ़ा दो बातें सिर्फ कोई पढ़ लेवे, जप जी साहब, हे जी साहब नु जप ते मन्ना सुख मिले। जपो परमात्मा को दिल से तो सुख तो आपके घर घर में भंडार में भरा हुआ है। रोज का मंत्र है, कभी गीता के महावाक्य तो कभी ग्रंथ साहब के महावाक्य तो कभी वेदों का रेफरेंस। तो वास्तव में ये विद्यालय है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय का मतलब है कि मुझे स्टूडेंट बन करके उसका न केवल पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, पर मुझे अपने जीवन को बुक बनाना है। पुस्तक पढ़नी नहीं है, पर मेरा जीवन ही पुस्तक बन जाए, मेरा जीवन ही आध्यात्मिक स्वरूप बन जाए। तो ये भगवान परमपिता परमात्मा शिव विश्व कल्याणकारी सर्व का कल्याण करने के लिए साधु संत महात्माएं, आपने सुना यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, बड़े प्यार से हम वो श्लोक सुनते हैं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम असुर अधम अभिमानी। तो वास्तव में हम दिल खोल के देखें तो ये किसी और के लिए बोला है, या हम ही अभिमान के पुतले बन गए? कोई सिर्फ शास्त्रों में जिनका वर्णन है असुरी, वो तो एक प्रकार के जैसे ड्रामा करते हैं तो एक सामने सैंपल रखते हैं समाज का अथवा, परंतु देखा जाए तो देह का भान अभिमान अहम वहम विकार आध्यात्मिकता का समाप्ति कर दी है। अंधकार आ गया तो अज्ञान अंधकार के कारण ही, स्वयं को न जानने के कारण और परमपिता परमात्मा को न जानने के कारण, सच्चिदानंद से सत्य संबंध न होने के कारण, आज हमारी जो सत्यता थी, जो श्रेष्ठता थी, जो दिव्यता थी, हृदय की स्वच्छता थी, पवित्रता थी, वो अपने आप से हम दिल खोल के देखे तो कितने परसेंट है। अभी तो सिर्फ चाहना के रूप में रह गया, हम चाहते हैं, मंगता बन गए हैं, हम मांगते हैं शांति दो, सुख दो, पवित्रता दो। अरे पिता परमात्मा को तो हैरानी होती है कि मेरे बच्चे जिनके हम जिसके लिए कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिसके कृपा से सुख घनेरे, और मात पिता परमात्मा सुखदाता, और उनके बच्चे दर दर के भिखारी। तो अभी आप सोचो कोई राजा का राजा अपने बच्चों को ऐसे भीख मांगते देखे तो राजा को तो अपनी शान और अपनी वो महानता पर थोड़ा ख्याल आएगा कि ये तो मेरी महिमा कर रहे हैं या मेरी ग्लानी कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं हम तो भक्ति मांग रहे हैं ना, मैं मांगू क्यों? मेरा संबंध जब पक्का जुट गया तब तो दिल में दिल रात वो गीत गाएगा, कहेंगे नहीं मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, हे भगवान मुझे मीरा वाली लगन लगा, तेरा तो कुछ नहीं लगता। अरे मैं आत्मा जिस पिता परमात्मा की संतान हूं, तो अगर भिखारी आज मेरे को किसी भी बहन ने याद कराया, दीदी आप हमेशा कहती है ना भिखारी बन के नहीं जाओ बच्चा बन के जाओ, मैं इनका बराबर राइट बात है, भिखारी आएगा दरवाजे पर तो भिखारी को आप क्या देंगे, टोकरा भर के फ्रूट दे देंगे, कपड़े का चलो एक ब्लैंकेट बिस्तरा दे देंगे, ठंड में बेचारा ना दुखी होवे, और सुख के साधन दे देंगे, और कुछ कैश दे देंगे, चलो कुछ महीने अपने आप खवाए खाए कमाए, पर ये नहीं कहेंगे अंदर आजा घर में आजा, चलो नौकर हूं नौकर बन के गया तो अंदर तो आजा, मैं भी एसी का सुख ले रहा हूं तू भी एक एसी का सुख ले, मैं भी वैरायटी खा रहा हूं तू भी वैरायटी खा, पर नौकर की चाबी नहीं देगा, घर के मलकियत का मालिक नहीं बनाएगा, पर अगर बच्चा है उसका तो नालायक बच्चे को कहेगा लायक बनाऊ, नालायक को लायक बनाऊ, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका ये मालिक बन जावे। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी हम अधिकारी बनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी प्रॉपर्टी है विजडम, परमात्मा की प्रॉपर्टी है ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद सत्यता शक्ति, उसकी हम अधिकारी हैं, पर बच्चे बनेंगे तो अधिकारी है ना, बालक मालक होता है, बच्चा वारिस होता है, इसलिए कहता है बच्चे अभी अपने आप को लायक बनाओ, परंतु लायक बनाने के लिए बनावे कौन, सब तो बेचारे ढूंढ रहे हैं भटक रहे हैं, आखिर रास्ता दिखावे कौन पढ़ावे कौन, तो सत्य ज्ञान देने के लिए सत्य शिक्षा के लिए परमात्मा को स्वयं शिक्षक बनना पड़ता है, खाली परम पिता नहीं परम शिक्षक बनना पड़ता है, और शिक्षा में पढ़ाई न कभी डर से पढ़ सकते हैं और न कभी अंधश्रद्धा से पढ़ सकते हैं, अंध पढ़ाई में अंधश्रद्धा नहीं होती, और डर है तो भी एग्जाम में फेल ना हो जाऊं फेल ना हो जाऊं, बेचारा चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकेगा, मार न खाऊं तो परमपिता परमात्मा फिर सच्चा संबंध सत्य गुरु बन करके सत्य लाइट देते हैं, गुरु तो अनेक है और सतगुरु के टाइटल वाले भी अनेक है, पर सदा सत्य सदा कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम, सदा नानक शिव जी के साथ आता है, सदा राम सदा कृष्ण सदा हनुमान सदा गणेश नहीं कहते, तो जो सदा ही कल्याणकारी है और सर्व का कल्याणकारी है वो कहता है बच्चे आध्यात्मिकता क्या है, आत्मा का दर्शन परमात्मा का दर्शन, आत्मस्वरूप में स्थित होना और परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़कर उनके गुणों का स्वरूप बन जाना। हमारे पास अगर हमको मिसाल के तौर पर मुझे दर्पण मेरा चेहरा देखना हो, आपको अपना चेहरा देखना हो, तो क्या चाहिए, मिरर चाहिए दर्पण चाहिए। अब दर्पण अगर नैनहीन को दे दे, अंधे को दर्पण दे देवे तो चेहरा दिखाई देगा, तो दर्पण तो बहुत भरे पड़े हैं, शास्त्र पोथियां पुस्तकें दर्पण है, उसमें रेफरेंसेस जरूर है क्योंकि अनुभव किए हुए हैं कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उसके आधार पर वो अनुभव की बातें लिखी हैं खोज की बातें लिखी हैं, परंतु परमात्मा फिर कहते हैं कि बच्चे तेरी अपनी आंख से अगर दर्पण है भी सही तो मुझे अपनी आंख से ही अपना चेहरा देखना है, दूसरे की आंख से आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। और ये मेरी आंख इस मेरे शरीर का ही अंग है, मेरे शरीर का ही दूसरे की आंख, दूसरा शरीर छोड़ेगा नेत्रदान करेगा तो दब उसका हो गया, कोई भी अंग दिया उसका अंग नहीं रहा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मुझे जब तक अपनी आत्मा का तीसरा नेत्र नहीं खुला है तब तक अपना दर्शन नहीं होता। तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोकों का ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं दर्पण तो है पर दर्पण पर अगर धूल जम गई ना, अनेक प्रकार के विचार मिक्स होते गए, चलो शीशा अच्छा है पर मिट्टी चढ़ गई है धूल, उड़ते उड़ते अनेक विचार, एक विचार में दूसरा विचार, एक धारा में दूसरी धारा, दूसरे में तीसरी धारा, वो दर्पण धूल वाला हो गया तो भी चेहरा नहीं दिखाई देता। और अगर दर्पण ठीक है लाइट नहीं है तो भी चेहरा नहीं दिखाई देगा। द नॉलेज इज लाइट, तो परम गॉड इज लाइट, ज्योत स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है। उस ज्योत स्वरूप परमात्मा द्वारा आत्मा की ज्योत जगती है और जब ज्योत जगती है तो जगी हुई ज्योत अनेकों को ज्योत जगाती है, उसकी ज्योत कम नहीं होती, ज्योत बढ़ती रहती है। तो परम पिता परमात्मा यही कहते हैं बच्चे अब बहुत समय तक अंधेरे में भटके हो, अब भटकने की जरूरत नहीं, अटके हो लटके हो फंसे हो किसमें, वो जो दिखाया ना बोझ उठा के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बर्डन उठा के चल रहे हैं और बंधन है, विकारों का बंधन है, फंसे हुए हैं। पर ब्रेन बड़ा तेज है, ब्रेन तो बहुत बड़ा है, खोज ये करे ये खोज करे ये खोज करे, परंतु खोजे क्या, रीडिस्कवरी किस चीज की, जो गुम हो गया है वो खोजना है। तो क्या गुम हो गया है, सुख गुम हो गया है, शांति गुम हो गई है, स्वच्छता गुम हो गई है, पवित्रता गुम हो गई है, आनंद गुम हो गया है। और खो गया तो अरे भाई ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे पास था ना, तभी तो ढूंढ रहे हो, अगर था ही नहीं तो गंवाया भी नहीं खोया भी नहीं, खोज रहे हो तो आपका ही है। इसलिए अपने मन को ही मंदिर बनाओ, मन को बनाओ मंदिर, अंदर जाओ अपने। मंदिर में जाते हैं जूता उतार के जाते हैं, तो ये भी अंदर जाना है ना, तो ये चमड़ी ये जो कपड़ा अनेक तरह का पहना हुआ है इसका भान उतार के जाना है। रंग अनेक है रूप अनेक है पहरावे अनेक है, इसके भान से परे चले जाओ, आप कौन हो, आप आत्मा हो। वो बाहर की आइडेंटिटी है बाहर का रूप, अंदर की आइडेंटिटी आप बस बिंदु हो, ज्योत स्वरूप हो। और ज्योत स्वरूप आत्मा की जब तीनों शक्तियां, मन खाली मन शुद्ध करने की बात नहीं है, बुद्धि को दिव्य बनाना है, बुद्धियों का बुद्धिवान, नहीं तो बुद्धि का ही अहंकार मारता है, बुद्धि का अहंकार ही ईर्ष्या द्वेष विरोध करता है और संस्कार टकराव में आकर के भेदभाव पैदा करता है। तो दिव्य संस्कार बनाने हैं तो भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो आदि की जो है जो सतयुग था स्वर्ग था सुख धाम था स्वच्छ था दिव्य था, ऐसा श्रेष्ठ था भारत फिर से हो, रामराज फिर से आए, श्री लक्ष्मी नारायण का राज फिर से आए, नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए तो वो आस परमात्मा इस संगम पर ही पूरी करते हैं। आप तो मैं लंबा तो नहीं करना चाहिए था, परंतु आपके प्रेम में मन की वो धारा बंद नहीं होती है, इसीलिए पूरा करती हूँ। ये बाकी 5 दिन 4 दिन रोज कुछ ना कुछ नया दरवाजा खुलेगा, खिड़की खुलेगी, पक्का ही बताती हूँ। सिर्फ ये है कि आपको अपने मन के अंदर जाने के लिए अपनी इच्छा जरूर जागृत पक्की रखनी है, तो जहाँ इच्छा है परमात्म मिलन की वहाँ वो पूरी होती जरूर है, मनोकामना पूर्ण होती है जरूर। मोस्ट वेलकम, अपने ही घर में आए हैं, बहुत बहुत आने की बधाई हो, भाग्य है कि आप सभी पधारे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी आदरणीय दीदी जी ने हम सबको इतनी विशेष और इतनी सुंदर धारणाएं और इतनी सुंदर बातें बताई। अगर इसमें से एक लाइन भी अगर हम धारण करेंगे तो हमारा जीवन भी समाज के लिए और अपने लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। तो 2 शब्द कहना चाहूंगी कि दीदी ने कहा कि आप अपने दिल को खोल दो परमात्मा के आगे। अगर स्वस्थ रहना है शरीर से और मन से तो अगर अपने दिल को खोल दो परमात्मा के आगे, वरना खोलना पड़ेगा आपको औजारों से और डॉक्टरों के सामने जाकर के। तो इसीलिए क्या मंजूर है, किसके आगे खोलना है, किसके आगे खोलना है, परमात्मा के आगे ना, किसी और के आगे मत खोलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परम आदरणीय दीदी जी का। अभी हम काफी लंबे समय से जिस विशेष महान आदर्श और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता की धनी ऐसी विभूति को मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे अति परम आदरणीय राजयोगी तपस्वी मूरत और नम्रता की मूरत ऐसे हमारे भ्राता करुणा भाई साहब, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई साहब के लिए। प्रोग्राम का समय था 6 बजे लेकिन हमारे भाई साहब 5 बजे से आकर के जिसको कहते एक्यूरेट और पंक्चुअल, ये महान व्यक्ति की महान विशेषताएं हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा कुमारीज का जो भी हमारा मल्टीमीडिया है, जो आज ये सभी लाइव प्रोग्राम आप सभी देख रहे हो, इनका सारा श्रेय हमारे भ्राता करुणा भाई साहब जी को जाता है, जो कि आप सभी ने देखा है पीस ऑफ माइंड अवेकिंग ब्रह्मा कुमारीज चैनल, कई स्टूडियोज है जो भाई साहब जी के माध्यम से चलता है। और इस ब्रह्मा कुमारीज को आज पूरे वर्ल्ड में फेमस करने के लिए जो परमात्मा ने जिनको निमित्त बनाया है वो हमारे आदरणीय भाई साहब है। मैं ज्यादा भाई साहब के लिए नहीं कहती हूँ, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, तारीफ क्या करूँ हम आपकी, क्योंकि आपकी तारीफ स्वयं भगवान करते हैं, आपकी तारीफ स्वयं भगवान करते हैं, आदरणीय करुणा भाई साहब।
सत्यम शिवम सुंदरम, मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में 20-21 साल में उम्र में मैं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त किया। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार एक गांव में जो संस्कार मेरे अंदर माँ बाप द्वारा प्राप्त था, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने जो पहला अनुभव किया यहाँ हम कभी ये नहीं देखते ये कौन है, कहाँ से आए हैं, नहीं। जो पहला जो शिक्षा हमको मिला कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जो भी हमारे सामने बैठे हैं, मंच में उपस्थित हमारे संत है, तो हम सभी एक चैतन्य शक्ति है, ज्योति है। ये शिक्षा हमको यहाँ पहले पहले प्राप्त हुआ, जो मैं ना मेरा इंजीनियरिंग में पढ़ सका, या जो मीडिया में मैंने सेवा की वहां भी ये बात नहीं बताया गया। यहां तक मैंने जब हमारे दादी जी से पूछा एक दिन, तो आप कौन से भगवान को याद करते हैं, किस भगवान को याद करते हैं, तो उन्होंने मुझे देख के हंसा कि आपने कहा तो मैं बहुत कुछ पढ़ा हूं, जानता हूं, परंतु आपको ये भी नहीं मालूम कि ईश्वर तो एक ही है। तो वो बात आज तक भी मुझे मेरे दिल में है, जो आज मीडिया द्वारा हम सारे विश्व को ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कोई व्यक्ति का प्रचार हम लोग न कभी किए हैं न कभी करते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा हम सबको एक ही मिला है कि ईश्वर एक है, ज्योति स्वरूप है। अब बात आती है कि इस दुनिया में हम सभी आए, परंतु हम सबका जो इस समय पर जो भाषाओं से या अपने विचारों से जो भिन्नता हम देख रहे हैं, तो ये दूर कैसे होगा। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक हम सबके सामने मिसाल है, एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकली 140 देशों में इन्होंने ज्ञान तो भारत का आदि सनातन धर्म का ही बता रहे हैं, परंतु उनकी जीवन पद्धति जो है, लाइफस्टाइल जिनको हम कहते हैं, तो उसी से प्रभावित होकर आज सारे विश्व में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा कर रहे हैं। जैसे पहले वक्ता ने बताए थे कि भाई 50,000 डेडिकेटेड बहने हैं, तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको भी निमंत्रण से, प्रार्थना से आप सबको बुलाए हैं, इसीलिए कि हम और आप सभी यहां रह करके जो हम सबका जीवन पद्धति क्या है, जो ज्ञान हम सारे विश्व को सुनाते हैं, तो हम उस पर कितना चलते हैं, तो ये अनुभूति हम आपस में सुनेंगे, मिलेंगे और देखेंगे, जो ताकि आज हमारे देश में भारतीय संस्कृति को किसी तरह से फिर से, जैसे हमारे देश में अन्य अन्य धर्म के राज्य चला, तो उस समय पर कुछ समय सनातन धर्म ऐसे दिखाई नहीं देता था, परंतु आप सबको देखते हुए हमारा जो सनातन धर्म कहीं नहीं गया है, वापस फिर से इस विश्व के लिए अभी प्रख्यात हो रहा है। तो इसीलिए आपकी बहनें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आप सबके साथ है, और हम सबका प्रयास इस समय पर स्वयं परमात्मा वही कार्य कर रहे हैं जो 5,000 साल पहले इस सृष्टि में सनातन धर्म की स्थापना की, उसके बाद अनेक धर्म आ गए। तो इसीलिए आप ऐसे पुण्य स्थान पर आए हैं, तो मेरा सौभाग्य है, मैं भी 60 साल से अधिक इस संस्था में हूं। यहां एक विशेष बात यह है कि कभी कभी कहते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं या संस्कृत आते हैं या मंत्र बोलते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप ये सोच लीजिए हर रोज हमारे एक घंटा 4 पेज का एक सत्संग हम करते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं, तो हर रोज नया वो डेट का, और सारे विश्व में हजारों जो हमारा सेंटर्स है हम सभी एक दिन वही पाठ पढ़ते हैं। आप सोचो आज हमारे संस्था 80 साल से अधिक हुआ है और एक दिन भी मिस नहीं है, तो 4 पेज परमात्मा के महावाक्य का सत्संग है, तो हम क्या कहे हमारी बहनें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं, तो आप सबके साथ है और हमारा लक्ष्य यही है कि सत्संग ही हमारी जीवन की परिवर्तन का साधन है। पर यह भी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आखिर ये संस्था इतनी विशाल रूप में बढ़ता गया है तो इसके पीछे भी कोई शक्ति तो होगा, तो वो है जो आप यहां अभी देखेंगे। अमृत वेला जिसकी महिमा सारे विश्व में है तपस्या के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए, हम भले सारे दिन कितनी भी लेट हो जाए सोने का, परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमारी जो बहनें हैं निमित्त है, तो सुबह 4 बजे हम उठते हैं अपने लिए। प्रकाश तो विश्व को भी मिल रहा है परंतु हमारे लिए आत्मा प्रगति के लिए परमात्मा स्मृति जिसको आप तपस्या कहे, तो वो अमृत वेला हम सभी करते हैं, तो इसीलिए ही आज हम आपके साथ बैठने का एक आप सब ने हम सबको मौका दिए हैं, प्रेम है, तो हम सभी मिलकर के फिर से भारत को सनातन धर्म के भूमि फिर से विश्व का विश्व गुरु के रूप में सेवा करेंगे, ऐसी आशा करते हुए आप सभी पधारे हैं, आप सबको दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी का, आपने बहुत सुंदर विचार हमारे सामने रखे। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे शुभकामनाएं देने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से, कोकिला मठ भुवनेश्वर से आप आए हैं, और आप सभी जो मंच पे सभी संतों को 2 दिवस में आप सभी का स्पीच रखा है, तो आप समय को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन रखेंगे।
ओम नमः नारायणाय, ओम शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्यमश्वभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तृष्णुवांसस्तन्नभिर्वेशेमदेवहितं यदायुः। श्रुतिशास्त्रपुराणं करुणायं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम आदरणीय वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय परम पिता, इस चरण में नमन करते हुए आज के इसी सत्र में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित सनातन संस्कृति के आधार पर अध्यात्म सत्र में इस सायंकाल स्वागत सत्र में परम आदरणीय वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरण सभी संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य के श्री चरण में नमन और वंदन करते हुए राज योगिनी ब्रह्म कुमारी, राजयोगिनी सुधेश दीदी जी, राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी, राजयोगी रामनाथ भैया जी, राजयोगी नारायण भैया जी और राजयोगी करुणा भैया जी, सभी जितने बैठे हुए राजयोगी और राजयोगिनी और ब्रह्म कुमारी ब्रह्म भाई बहनों की आभार व्यक्त करते हुए सबके लिए और यहां जितने बैठे हुए सभी सज्जन महाजन सबके लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए और श्रद्धा व्यक्त करते हुए मेरा वाणी शुरुआत करता हूं। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं, मैं दो बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो राजयोगी रामनाथ भैया जी है, लेकिन मेरे को जिन्हें यहां लाए राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी लीना बहन जी, जिसने मेरे को बोले स्वामी जी संत इस सत्र में आनी चाहिए, जो संत सम्मेलन हो रहा है, जो संस्कृति के आधार चर्चा हो रही है, मैं आज इस स्वयं कालांत सत्र में एक कहना चाहता हूं। जिस विषय पर इस सत्र हो रहा है और इस मंथन भी हो रहा है, कई बात तो सुने है, जो मेडिटेशन जिसको बोलते हैं हम आज राजयोग नाम पे हम कहते हैं, जो अलग दिशा आग बंद करने से कुछ सारे दिशाएं सारे चक्कर आ जाती है, इसे निपटना और एकांत हो जाना। एक अभी थोड़ी देर पहले हम सुने और दिखे भी एक छोटा सा नाटक माध्यम से कैसे संतुलित हो एक नया दुनिया हम प्राप्त किए। मैं ये कहना चाहता हूं सभी संत महंत महामंडलेश्वर महाराज जी की ओर से भी कहना चाहता हूं, इसी सत्र जो है सारा जगत के लिए है, दुनिया के लिए है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी होगी, श्रुति विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नैक मुनिश्च वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजन जनगतस्य पंथा। श्रुति शास्त्र अनेक से अनेक, तो इसीलिए किसी की बात को 100% मना नहीं जाता है। धर्म का तत्व बुझना समझना इतना आसान नहीं है। हम बोलते हैं धारयति इति धर्मः, तो धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजन जनगतस्य, जो परम आदरणीय महात्माओं ने परम पुरुष ने शुद्धात्मा ने जो विचार करके रखे, जो निचोड़ के जो निष्कर्ष हमारे सामने रखे, इसी की पथ पर हमको चलना है। जो निचोड़ के रखी इसी रास्ता में मेरे को निर्देश हुआ है, जो आज ज्यादा नहीं बोलना, काल के सत्र परसों सत्र जो सत्र है इसमें बात रखनी होगा, लेकिन फिर भी दो बात स्वागत में आज जो परिचय की स्वागत सत्र है, मैं सभी से फिर नमन करते हैं संत महात्मा के चरण में और सभी यहां भी आभार व्यक्त करते हैं सभी राजयोगी राजयोगिनी और ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी और सभी सज्जन के लिए भी सभी आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, जो हम किसी दिशा में चल रहे, किसी विचार में चल रहे, ज्ञान जोगात्मक काम विधि जोगा संग संयुक्तम संग संयोग जोगे तिक्त जीवात्म परमात्मा, जो परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन हो, यही योग है, जो प्रक्रिया है। तो नाद बिंदु का मिलन जो है और जो ये जो कई विषय रखा है जो निचोड़ के रखे है हमारा जीवन के एक परिवर्तन, मैं कहना चाहता हूं इस सत्र में जहां परिवर्तन नहीं वहां कोई सफलता नहीं है, ये परिवर्तन का लिए ही सफलता, जिस क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। तो अच्छी बात रखे और इसे व्यवस्था किए। मैंने आके देखा, सुना था कई दिन से माउंट आप आने के लिए तो मौका दिए उन्होंने, तो मैंने आके देखा कई सुंदर व्यवस्था है, सुंदर की तरीका है, शांत है, किसी को निर्देश नहीं आ जाता, आप ऐसे करो ऐसे करो, किसी को भी नहीं निर्देश दिया जाता नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं, प्रेम से करते हैं, भाव से करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, साधना भी करते हैं, और सबसे आखिर जो ध्यान करते मौन रहते हैं, ये जो है ये विश्व को शांति दिलाने का एक पथ भी है हमारा, जैसे महात्मा ने कर रहे, और ये भी एक विराट स्वरूप आप सारे विश्व दरबार में दिखा रहे। तब भी हम इसी की विचार में साधुवाद देते हुए मैं इसी शाम कालांश को वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः नारायण जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि हम जो कुछ सुनेंगे अगर उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें हमारा यहाँ आना यथार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो एक बार हम स्वामी जी के लिए ताली बजा करके आपका अभिवादन करते हैं। और अभी आज आप सभी ज्ञान सरोवर परिसर में जो बैठे हुए हैं और 3 दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है, तो किस प्रकार से ये प्रोग्राम की रूपरेखा होगी, कैसे कैसे रहेगा, तो इसका पूरा सुचारू रूप से जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा हम सब के लिए रखने के लिए हमारे ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जोनल कोऑर्डिनेटर धार्मिक प्रभाग इंदौर से हैं। और आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल कर्मठ होकर के हमारे नारायण भाई जी ने ये सारा प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया और बहुत अच्छी तरह से सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी थोड़ा सा शेष प्रोग्राम है, आप सभी कोई भी जाएंगे नहीं, आप सभी के लिए विशेष आदरणीय दीदियों के द्वारा आप सबको हमारी जो ब्रह्मा कुमारी इसकी जो परंपरा है दादा लेखराज के समय की, बाबा के समय की, कि आप सभी मेहमानों को ईश्वरीय सौगात दी जाएगी। तो शेष प्रोग्राम है, आप सभी इतना पेशेंस से थोड़ा पेशेंस रख करके आप बैठेंगे, हमारे संत अभी हमारे सामने बैठे हैं। तो अभी नारायण भाई जी से निवेदन करती हूँ प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे सामने रखेंगे।
ओम शांति। पहले मैं धार्मिक प्रभाग की ओर से स्वागत की कड़ी में जो हमारे स्टेज पर बैठे हुए सम्मानित गुरु दीदियां बैठी हुई है तो 2 लाइन अर्पित करना चाहूंगा। सतगुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं, भटक जाता है जब इंसान तब सतगुरु के बच्चे मास्टर गुरु देते हैं ज्ञान की पहचान। ऐसे हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी, करुणा भाई जी, मनोरमा दीदी जी, रामनाथ भाई जी और सम्मानित हमारे महामंडलेश्वर संत महात्मा कथाकार और सामने बैठे हुए आप सभी मेहमानों का धार्मिक प्रभाग बहुत दिल से स्वागत करता है। और इस स्वागत की कड़ी में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम किस तरह से चलेगा, सबसे प्रथम दिन स्वागत सत्र के रूप में आप साक्षी बन करके इस हार्मनी हॉल में इस कार्यक्रम का आप अनुभव भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आगे आने वाले 4 दिन में कार्यक्रम की किस तरह से रूपरेखा रहेगी तो उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत होती है सवेरे उठने की, परमात्मा समृद्धि में आप जहां भी ठहरे हुए हैं 3:30 बजे स्पीकर के द्वारा गीत बजते हैं तो उठने के लिए परमात्मा समृद्धि में हम उठते हैं। फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर के आप सभी 4 बजे इस हाल में सवेरे के समय का अच्छा डीप साइलेंस का अनुभव करने के लिए यहां पर आप पहुंचेंगे। 4 से 4:45 बजे तक डीप साइलेंस का अनुभव राज्यों के द्वारा कराया जाएगा और फिर इसके बाद 4:45 से 5:30 बजे तक आप सभी के लिए चाय दूध कॉफी की व्यवस्था डाइनिंग हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर रखी गई है। आप सभी के लिए वहां पर सुबह की और नाश्ते के बाद की चाय दूध की व्यवस्था और शाम के समय की व्यवस्था वहां रखी गई है। फिर इसके बाद प्रातःकालीन राज्योग सत्र जो 3 दिन ये आपको इसी कड़ी के अंदर ये कार्यक्रम यहाँ चलाए जाएंगे। प्रातः 6:30 बजे राजयोग सत्र का प्रथम सेशन होगा आत्मदर्शन और कल इस राजयोग सत्र के बाद 10 बजे इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आप सबकी उपस्थिति में होगा और ये उद्घाटन का कार्यक्रम जो इस कार्यक्रम का विषय रखा गया सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्म इसके ऊपर हमारे काफी सीनियर भाई बहने इसमें भी अपने अनुभव व्यक्त करेंगे। तो कल ये उद्घाटन का कार्यक्रम प्रातः 10 बजे यहाँ शुभारंभ होगा। फिर इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 1 से 2 का समय आप सभी के लिए लंच का रखा गया है और आप सबके भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर 2, 3, 4 में सभी की व्यवस्था वहां रखी गई है और आप भोजन करके भी 2 से 4 के बीच में ये ज्ञान सरोवर का अवलोकन भी कर सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं। इस ज्ञान सरोवर में दादी जानकी गार्डन, बाबा का कमरा, डोम, इस तरह से एक सुंदर आर्ट गैलरी बनाई गई है तो आप 2 घंटे के पीरियड में आप इसका आनंद भी ले सकते हैं और शाम को 4 से 5 के बीच में पुनः आपके लाइट रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था चाय दूध कॉफी की पुनः डाइनिंग हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर रखी गई है और शाम के समय जो सत्र चलेंगे वो शाम के समय कल हेल्दी लाइफ स्टाइल 5 बजे एक स्पीच सेशन होगा जिसमें हमारे बहुत ही एमिनेंट डॉक्टर आप सबको अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे और शाम को 6:30 से 8 बजे शाम का समय बहुत डीप साइलेंस का अनुभव करने का रहता है तो साधना के द्वारा किस तरह से हम डीप साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं ये कल की तरह की रूपरेखा रहेगी और 8 बजे के बाद आप सबकी रात्रि भोजन की व्यवस्था डाइनिंग हॉल में इस तरह से चलेगी और फिर नेक्स्ट डे 27 को अमृत वेला इसी तरह से चलेगा और राजयोग शिविर भी 6:30 बजे सेकेंड शिविर परमात्मा का परिचय वो भी यहीं चलेगा और इसके बाद इस संस्था का इतिहास जो इस संस्था के जो मुख्य फाउंडर थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा उसकी जीवन कहानी उस दिन आप थोड़ा टाइम नोट करेंगे 27 तारीख को 9:30 से 11:45 बजे तक संस्था का इतिहास और ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी बताई जाएगी और इसके बाद फिर खुला सेशन 10:45 से 1 बजे तक आयोजित होगा और फिर आपका दोपहर भोजन और फिर आराम और फिर शाम को विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से साइलेंस शक्ति के द्वारा हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं इस विषय पर शाम को 5 से 6:30 बजे तक संबोधन रहेगा और फिर इसके बाद 6:30 से 8 बजे तक टॉक शो जिसमें हमारे काफी अनुभवी बीके वक्ता और संत भी होंगे बहुत अच्छा टॉक शो का आयोजन किया गया तो इस तरह से 27 तारीख का कार्यक्रम रहेगा और 28 तारीख को समापन सत्र प्रातः 10 से 12 बजे तक और अमृत वेला और राजयोग शिविर इसी क्रम में चलेंगे और उसी दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक समापन सत्र का कार्यक्रम रहेगा और फिर आप दोपहर भोजन करके आपके घूमने का कार्यक्रम पांडव भवन ग्लोबल हॉस्पिटल और पीस पार्क जो यहाँ के देखने के स्थान है वो आप देख सकेंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पीरियड में कोई भी साइट सीन का प्रोग्राम नहीं बनाए ये सब कार्यक्रम का आप लाभ लें। 28 तारीख को साइट सीन का प्रोग्राम ऑफिशियल रखा गया है आप उसी अनुसार आप प्रोग्राम को फॉलो अप करेंगे तो आपका आना यहाँ सार्थक होगा। और इस कार्यक्रम का पूरा प्रसारण ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है और अवेकनिंग टीवी के ऊपर भी किया जा रहा है। आप चाहें तो इसको बाद में भी आप इसको देख सकते हैं और दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और भोजन की व्यवस्था सभी के लिए ग्राउंड फ्लोर पर और चाय दूध की व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पर रखी गई है। तो इस तरह से कार्यक्रम चलेगा और 29th लास्ट डे राजयोग सेशंस होगा और इसके बाद आप सबका प्रस्थान होगा। प्रस्थान से पहले आप सभी के फाइल में एक अनुभव पत्र दिया गया है, वो अनुभव पत्र आप जाने से पूर्व भर करके कॉन्फ्रेंस ऑफिस है नीचे की तरफ, वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं या रिसेप्शन ऑफिस में आप सबमिट कर सकते हैं या फिर आप यहां राजयोग सेशंस के बाद यहां स्टेज पर भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम की ये 5 दिवसीय कार्यक्रम की इस तरह से रूपरेखा रहेगी। और इस कार्यक्रम के अंत में आप सभी जो भाई बहन आए हुए हैं आप सभी को अभी ईश्वरीय सौगात मिलेगी। तो उसकी रूपरेखा इस तरह से है, पहले जो भी बीके भाई बहन गाइड हो चाहे टीचर्स बहने हो चाहे सेवादारी हो वो सभी इस तरफ से आएंगे मेरे राइट साइड की तरफ से और पहले वो आकर सौगात लेंगे, फिर इसके बाद मेहमान आएंगे, मेहमान उस लेफ्ट साइड से आएंगे और सौगात लेंगे। सौगात के पश्चात आप सभी भोजनशाला में जाएंगे, वहां आप भोजन ग्रहण करेंगे। तो सौगात से पहले हमारे जो स्टेज पर बैठे हुए आमंत्रित ये हमारे साधु संत महात्माएं हैं इनको सौगात दी जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भाई जी का। अभी हम बहुत ही सुचारू रूप से परमात्मा की प्रेरणा से आज आप सभी का स्वागत हुआ, आपका भी स्वागत हुआ, संतों का भी स्वागत हुआ। तो सभी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और अभी हम सिर्फ 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और हमारे बीच में सद्गुरु स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर मौन की साधना करते हैं, परंतु वो बहुत सुंदर शंखनाद करते हैं। तो शंखनाद के साथ साथ हम मेडिटेशन करेंगे, तब तक हमारी व्यवस्था भी हो जाएगी 1 मिनट के लिए।